ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक आनंद मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, अटल इनोवेशन मिशन पैन 2.0, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, पन बिजली योजनाएं, रेलवे के मल्टीट्रैक प्रोजेक्ट्स, ये ऐसी कुछ परियोजनाएं और प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिली। और इन मंजूरी से ये अपेक्षा जताई जा रही है कि जहां एक तरफ इन परियोजनाओं से किसानों को लाभ होगा, वहीं एक तरफ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में फायदा होगा, डिजिटल इंडिया को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और जो दूसरे और निर्णय हैं उससे भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचागत परियोजनाएं हैं, उनको भी लाभ पहुंचेगा। तो आज इन्हीं कुछ निर्णयों पर हम कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं राजनीतिक विश्लेषक आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद अमन जी।
सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन को। ये माना जा रहा है कि 1 करोड़ किसानों को इस परियोजना से लाभ होगा और प्राकृतिक कृषि को भी इससे बहुत लाभ पहुंचेगा।
कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मिशन के बारे में बात करते हुए कहा कि इस मिशन से करीब 1 करोड़ किसानों को लाभ होगा और साथ में उन्होंने इस मिशन के उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी साझा की।
इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो विलिंग फार्मर्स हैं, जो विलिंग पंचायत हैं, उनको आगे लाए और एक प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जा रही है। ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि नेचर के आधारित, प्रकृति के आधारित खेती हो, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और खेती दोनों इंटीग्रेट हो जाए, बहुत फोकस दिया जाएगा नॉलेज क्रिएशन पे और रिसर्च पे, और फोकस किया जाएगा जो फार्मर्स अपने अनुभव लेके आते हैं उन अनुभवों के आधार पे क्या साइंटिफिक नए लॉजिक तैयार किए जा सकते हैं। साइंटिफिक मेथड के अनुसार कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाए जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट देश में और विदेश में, दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि होने वाली है, तो वहां पे कॉमन स्टैंडर्ड, साइंटिफिक तरीके से चेक की हुई लेबोरेटरीज, वो सब बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और एक सिंगल नेशनल ब्रांड की बनाई जाएगी इस मिशन में, जो कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट के लिए उपयोग में की जाएगी।
आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास इस परियोजना के एलोकेशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
जी कमल जी, अगर पिछले कुछ दिनों में जो निर्णय लिए गए सरकार के द्वारा, कैबिनेट डिसीजन के थ्रू और लेजिस्लेशन के द्वारा भी, तो स्पष्टता किसानों की स्थिति को बेहतर करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आप देखें तो कई बार जो है किसान आंदोलन भी हुए हैं पिछले कई सालों में, और सरकार को उसको एड्रेस करने की जरूरत पड़ी है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, जिसने की ये कृषि मंत्रालय को ही किसान कल्याण मंत्रालय का नाम दिया था, पिछले इस सरकार मोदी 3.0 में कई ऐसी निर्णय लिए गए हैं कि जिससे न केवल किसानों का भला हो बल्कि कृषि की आधारभूत संरचना में परिवर्तन हो। देखिये, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर का एक प्रकोप जो है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, कई विश्व कई देशों में महसूस किया जा रहा है। कई तरह की गंभीर बीमारियों में भी जो रिसर्च आए हैं वो बता रहे हैं कि जो बहुत अधिक इस्तेमाल जो केमिकल फर्टिलाइजर हो रहा है उससे फूड ग्रेन की क्वालिटी, गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा महसूस किया जा रहा है कि शायद जो प्राकृतिक खेती है उसकी ओर सब्सटेंशियल रूप से वापस जाया जाए। उसमें हमेशा से चुनौती रही है उत्पादन की क्षमता को लेकर। केमिकल फर्टिलाइजर आए ही इसलिए इस्तेमाल में क्योंकि इससे लगा कि फूड ग्रेन का उत्पादन ज्यादा संख्या में हो सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे, और यहाँ अनाज की कमी का मुद्दा स्वतंत्रता की प्राप्ति के कई दशकों तक छाया रहा था और एक ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जो है अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन अब करीब करीब भारत जो है अनाज उत्पादन में सेल्फ सफिशियंट है, तो अब जो हेल्थ हैजर्ड की बातें आ रही हैं नेशनली इंटरनेशनली, उसको भी कहीं न कहीं प्राकृतिक कृषि जो है सोल्व सोल्यूशन देने के दिशा में आगे बढ़ेगा। आपने एक बात कही, करीब 1.8 करोड़ किसानों को, 2 करोड़ किसानों को इसका फायदा होगा। किसानों को तो फायदा होगा ही है, साथ ही साथ जो कंज्यूमर उपभोक्ता हैं उनके भी जो लार्जर इंटरेस्ट हैं, जो लार्जर हेल्थ इंटरेस्ट हैं, उसकी दिशा में एक समाधान करने का प्रयास है।
अब हम दूसरे निर्णय की ओर चलते हैं। भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना सरकार संचालित करती है, वो है अटल इनोवेशन मिशन। और कल के निर्णय में 2028 तक के लिए इसको जारी रखने की मंजूरी दी गई है करीब 2750 करोड़ रुपए की लागत से। तो किस तरह से देश में पूरा नवाचार और एक रचनात्मकता का इकोसिस्टम बनाने में और रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने में अटल इनोवेशन मिशन की भूमिका है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
अटल इनोवेशन मिशन एक टेस्टेड एंड ट्राइड स्कीम रही है और उसके बारे में एक सकारात्मक जो है फीडबैक रहा है सरकार को। तो ये सिर्फ कंटिन्यूएशन है, इसमें कोई नई बात सरकार ने नहीं कही है, ये काफी समय से चलता आ रहा है। और जो इनकी जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं इनके, उसका दायरा बड़ा किया जाएगा इसमें, और आने वाले समय में इसके जो फायदे हैं वो जो बेनिफिशियरीज उनको मिलेंगे। और एक तरीके से समझिए तो आप, ये मोदी सरकार की केंद्रीय योजनाओं में से एक योजना रही है, जो उनकी जन कल्याण की जो प्रमुख योजना में रही है उसमें एक मिशन मोड में योजना काम करती रही है।
और जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर भी करीब 2500 ऐसे अटल लैब्स बनाए जाने की योजना है। तो क्या इन क्षेत्रों को जो कवर करने की कोशिश है आगे आने वाले समय में, इससे इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी?
जी बिल्कुल, इनोवेशन जो यूथ को जोड़ने की एक जो कोशिश है, खासकर जम्मू कश्मीर में, जहाँ की काफी दिनों तक अतिवाद का एक माहौल रहा, वहाँ उग्रवाद रहा, और अभी धारा 370 खत्म होने के बाद एक मेन स्ट्रीमिंग हो रही है क्षेत्र की। तो इस तरह के जो अटल मिशन लैब बनेंगे उससे काफी लोगों को जोड़ने में मदद मिलेगी, जो युवा वर्ग है उसको जो जोड़ने में मदद मिलेगी, और एक विकास का मानक बनाने की कोशिश है सरकार को, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ विकास नहीं होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी रही हैं।
एक बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, इस पर काफी चर्चा भी हुई और काफी रोचक भी ये लग रही है सुनने में, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बड़ी परियोजना होने वाली है, क्योंकि इसमें एक ही सब्सक्रिप्शन के जरिए जर्नल्स और जो शोध सामग्री है वो इकट्ठी मिल पाएगी, इस परियोजना को थोड़ा समझाएं।
बिल्कुल, देखिए ये जो शोध का बात रही है वो ना छोटे शहरों में खासकर बड़ी समस्या रही है। जो महानगर रहे हैं वहां तो व्यवस्थाएं रही हैं, उस तरह से हमारा डिजिटल पुश भी काफी हुआ है, ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी भी रही है लोगों को रिसर्च जर्नल्स की, लेकिन जो सेकंड टीयर और थ्री टीयर की सिटीज है वहां जो संस्थान रहे हैं, वहां जो विद्यार्थी रहे हैं, उनको शोध में बड़ी समस्याएं होती थी। तो ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है, अगर ये सही से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो ये एक तरीके से गेम चेंजर होगा कि 13,000 अंतर्राष्ट्रीय ई जर्नल जो है आप एक एक्सेस कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन पे। क्योंकि ये सिर्फ व्यक्तिगत छात्रों के लिए तो शायद अभी ये स्कीम जो है उसका वो लिंक किया जाएगा शैक्षणिक संस्थाओं से, और शैक्षणिक संस्थाएं जो है लिंक करेंगे विद्यार्थियों से। इसमें जो छोटे शहरों में जो यूनिवर्सिटीज रहे हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत रही है, उनकी फंडिंग कम रहती थी, तो बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल को वो इंडिविजुअली एक एक करके सब्सक्राइब नहीं कर सकते थे, उतना उनका बजट नहीं होता था। इस सब्सक्रिप्शन के आने की वजह से क्वालिटी जो एजुकेशन है, क्वालिटी जो जर्नल है जो अलग अलग विषयों पे हैं, कृषि पे हैं, बाकी तरह के अनुसंधान पे हैं, वो सारे संस्थाओं में मौजूद रहेंगे और संस्थाओं के द्वारा विद्यार्थियों को ही मिलेगा। मेरा मानना है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर ये सबके लिए फायदे की बात है, यूथ के लिए, खासकर जो छोटे और मझोले शहर हैं उसके छात्रों के लिए तो ये बिल्कुल ही एक क्रांतिकारक साबित हो सकती है अगर ये योजना सही से।
और विद्यार्थियों को जो गुणवत्ता क्वालिटेटिव एजुकेशन चाहिए, रिसर्च मटेरियल चाहिए, उसमें भी इससे लाभ होगा?
जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी कल्चर जो है उसका तो कई कई अंत ही हो चुका है छोटे शहरों में। हम 20-25 साल पहले जो लोग लाइब्रेरी में जाया करते थे और बहुत कुछ रिसर्च किया करते थे, उस तरह की फिजिकल रिसर्च अब आउट ऑफ फैशन है। अभी जब सारा ही चीज डिजिटली अवेलेबल है, लोग ऑनलाइन पे जा रहे हैं, तो ऐसे में ये योजना जो है उनको एक ही जगह पे बहुत सारे क्वालिटी जर्नल के साथ उनका संपर्क कराएगी और विद्यार्थियों के लिए आसान होगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे शैक्षणिक संस्थान अगर इसको आगे बढ़ा के व्यक्तिगत मोबाइल वगैरह पे इसका एक्सेस दें, उनको कोई आईडी वगैरह बना के हर व्यक्ति को अलग एक्सेस प्रोवाइड करें, तो ये समझिए कि घर बैठे भी छात्र जो है जर्नल्स को देख पाएंगे और अपना ज्ञानवर्धन कर पाएंगे, अपने शोध में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे।
मनमाड़ जलगांव रेल लाइन, भुसावल खंडवा रेल लाइन और तीसरी प्रयागराज माणिकपुर रेल लाइन, ये तीन मल्टी ट्रैक प्रोजेक्ट्स को भी कल मंजूरी दी गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से। और ऐसा समझा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश का पूरा कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी है और जो आवाजाही है, उसमें बहुत ज्यादा सुधार होगा, चाहे माल ढुलाई हो, यात्रियों की आवाजाही हो। तो किस तरह से इस मल्टी ट्रैक प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं?
देखिए, जब ये कैबिनेट का निर्णय अनाउंस हुआ तो कुछ लोगों ने इसको महाराष्ट्र चुनाव से जोड़कर देखा, मगर ये थोड़ी अतिशयोक्ति है क्योंकि ये बड़ी परियोजनाएं हैं, ये एकाएक एक दिन में सारा निर्णय नहीं किया जाएगा। चुनाव का रिजल्ट आ गया तो महाराष्ट्र से जोड़कर इसको कर दिया गया है। ये जो पूरी रेल योजनाएं हैं वो महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरती हैं, तो सिर्फ माल ढुलाई में तो बढ़ोतरी होगी ही, एक तरह से जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं उसको भी कनेक्ट करती हैं। जैसे अब आपका प्रयागराज है, वाराणसी है, आपका ओंकारेश्वर खंडवा में है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, तो चित्रकूट, गया, शिरडी, ये सब जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं ये भी इन रेल परियोजनाओं से जुड़ते हैं। तो एक तरीके से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और बाकी जो एक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एक जो इंडस्ट्रियल बेल्ट उनका रहा है, वहाँ पे औद्योगिक उत्पादन का क्षेत्र रहा है, तो उनको भी फायदा होगा इससे।
और ब्रीफिंग में कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि एक तो जहाँ बहुत ज्यादा इस परियोजना के आने से जो सड़कों पर ट्रैफिक था उसमें तो कमी आएगी ही, साथ में एक और उन्होंने आंकड़े दिया था कि बड़ी मात्रा में डीजल जो सड़कों पर जलता है वो भी इस शॉर्ट रूट से कम होगा, और जब ढुलाई या यात्रियों की आवाजाही रेल के जरिए होगी तो बड़ी मात्रा में जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें भी कमी आएगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
सड़क यातायात के तुलना में रेल यातायात हमेशा ही कम प्रदूषणकारी रहा है, और बड़ी संख्या में इसमें माल ढुलाई या यात्रियों का आवागमन संभव होता है। मैं एक चीज और कहूंगा कि इससे बहुत बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी, क्योंकि सड़कों पे उनकी सीमा से ज्यादा वाहन चल रहे हैं।
बिल्कुल।
और आए दिन हम सुनते रहते हैं कि हाईवे पे एक बड़ी दुर्घटना हो गई, तो इसमें भी कमी आएगी।
और साथ में जैसे अब लक्ष्य रखा जा रहा है कि परियोजनाओं को तय समय में पूरा किया जाए, अगर इस मल्टी ट्रैक परियोजना की बात करें तो 4 साल में इसे पूरा करने की परियोजना रखी गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये, बड़ी परियोजना है, 4 साल में पूरा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि टाइम फ्रेम के अंदर योजनाएं पूरी कर ली जा रही है। गडकरी जी के मंत्रालय के अंदर में कई ऐसी योजनाएं हुई है जिन्होंने रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने कम्प्लीट किया है। अब ये रेलवे की परियोजना है, क्या इसको बिल्कुल उसी गति के साथ कर लिया जाता है? कर लिया जाएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि ये सरकार के इसी टर्म के अंदर में पूरी हो जाएगी। फिर
अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई, जो शियोमी जिला है वहां पर एक हियो परियोजना और टाटोवन परियोजना, दो बड़े पनबिजली प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, तो इन पर आपकी टिप्पणी, किस तरह से देश में ये हमारी जो बिजली की मांग है उसको पूरा करने में पनबिजली परियोजनाएं बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी?
बिल्कुल, बिजली परियोजनाओं में पनबिजली परियोजनाएं जो है वो सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में सफल होती हैं। थर्मल जो पावर है उससे ज्यादा सस्ती और उससे ज्यादा प्रदूषण रहित उत्पादन बिजली का कर पाती हैं पनबिजली परियोजनाएं। नॉर्थ ईस्ट में जो फोकस है उसका कारण ये भी है कि सरकार का एक फोकस रहा है नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर। अरुणाचल प्रदेश पे चाइना से भी जुड़ी की समस्याएं वहां पे रही हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में विकास की एक पुरजोर कोशिश की जा रही है कि वहां डेवलपमेंट हो, और वहां पे स्थितियां ऐसी हैं कि वहां पे पनबिजली अच्छी मात्रा में उत्पादन की जा सकती है। सरकार का ये मैं लार्जर डेवलपमेंट के नैरेटिव से जोड़ के देखता हूँ, खासकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास की ओर से।
और जैसे जो पनबिजली वाले राज्य होते हैं जहां पर ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि उन राज्यों को अतिरिक्त लाभ होता है बिजली पैदा करने के अलावा, जैसे मुफ्त बिजली का तो एक फायदा है ही, और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां डेवलप होते हैं, रोजगार के अवसर बनते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तो इस दिशा में आने वाले समय में इन प्रोजेक्ट्स से अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से ऐसे अवसरों को आप बनते हुए देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, सब्सिडियरी जो डेवलपमेंट है, सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज जो है वो खड़ी होती है इस तरह की बड़ी परियोजना जब भी किसी राज्य में आती है तो, और खासकर पनबिजली वाली परियोजना बड़ी योजना होती है, उत्पादन का दायरा उसमें बड़ा होता है, तो सिर्फ बिजली उत्पादित नहीं होगी, वहाँ पे उत्पादन में जो लोग लगेंगे वो वहाँ पे रहेंगे, उसके आसपास छोटी छोटी और भी विकास की चीजें होंगी, और स्थानीय लोगों को आपने जैसा कि कहा कि सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली के अलावा भी जो है एक ओवरऑल जो बड़ी परियोजना से जो क्षेत्र का विकास होता है उसका फायदा होगा, रोजगार सृजन होगा, रोजगार सृजन के साथ जो है वहाँ पे मार्केट नए बनेंगे। एक जो नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल कटा हुआ रहा काफी दिनों तक, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी।
PAN 2.0, पैन को लेकर एक नई घोषणा, नई परियोजना की घोषणा, इस पर आपकी आखिर में टिप्पणी?
जी बिल्कुल, एक तरीके से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको और ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी और आसान तकनीक के सहारे बनाने की कोशिश है। हम आने वाले समय में ऐसी कई और योजनाएं भी देखेंगे, जैसे पैन और आधार को लिंक करना एक योजना थी, वित्तीय अनियमितताओं को भी रोकने की कोशिश है।
बहुत बहुत धन्यवाद आनंद मिश्रा जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और अपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी।
धन्यवाद कमल जी।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक आनंद मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है EIRNSGtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।